कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है, कृष्ण जिनका नाम है, कृष्ण गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार पर प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ॐ अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितानि न भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने గౌరద్విషే నమః. కదా ద్రక్ష్యామి నందస్య బాలకం నీపమాలకం లసత తిలక బాలకం పాలకం సర్వసత్వానాం. కదా కదా ద్రక్ష్యామి నందస్య బాలకం. కస్తూరి తిలకం లలాట పటలే పక్షస్థలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే వరమౌక్తికం కరతలే వేణుం కరే చ కంకణం సర్వాంగే హరిచందనం సులలితం కంఠే చ ముక్తావళీ. గోపీభిర్పరివేష్టితో విజయతే గోపాల చూడామణి. ఆరాధ్యో భగవాన్ వ్రజేశ తనయ తద్ధామ బృందావనం రమ్యా కాచిదుపాసనా వ్రజవధువర్గేన యా కల్పితా. శ్రీమద్భాగవతం ప్రమాణమలం ప్రేమ కుమార్తో మహాన్ శ్రీచైతన్య మహాప్రభోర్మతమిదం తత్రాదరో న పరః. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇది నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పశ్చాత్య దేశ తారిణే. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర్భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ तो यहां कोई श्लोक है. शायद फिर ठीक ही है, नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हैं. హరి హరి. హలో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ బోల్ లియా. భాగవత్ కా పహలా మంత్ర తో వహీ హై. ఓం నమో భగవతే पता नहीं। अगर हम भगवान को वासुदेव को पंखा केवल ये पंखा बंद हो सकता है क्या? नमस्कार कर सकते हैं, और भगवान उस नमस्कार को स्वीकार कर सकते हैं, तो फिनिश्ड हो गया। अगर ऐसा अगर हो सक जब होगा, हमने किया नमस्कार और भगवान ने उस नमस्कार को स्वीकार कर लिया, परम कल्याण, पराम गतिम को हम प्राप्त कर सकते हैं। मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। और भी कुछ कुछ करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा, और इस बात को भगवान ने ये गोपनीय मोस्ट कॉन्फिडेंशियल गुह्यतमम बात कहा। अब मैं गुह्यतम बात कहूँगा, इसे कह के फिर भगवान ने कहा मन मना भो मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु। और ऐसा अगर तुम हरी तो, हरी माम एव यशसि सत्यम ते, फिर भगवान ने कहा माम एव यशसि, मेरी ओर आओगे, मेरे धाम में लौटोगे, और वहां लौटने के लिए तुमको कुछ अलग से व्यवस्था नहीं करनी होगी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह फ्लाइट बुक करो या वो भी व्यवस्था भगवान करते हैं। माम एव यशसि सत्यम ते, और फिर भगवान के सत्य, मैं सत्य कह रहा हूं, और सत्य संकल्प भगवान प्रति जाने प्रतिज्ञा पूर्वक मैं कहता हूं, शपथ ग्रहण करता हूं। और ये सब क्यों करता हूं? प्रियोसी में प्रियः असि, तुम मुझे प्रिय हो। प्रिय रे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव ऐक्षत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव के पुत्र वासुदेव सर्वप्रथम भगवान को देखने वाले देवता भी एकत्रित हुए थे मथुरा मंडल में। दर्शन कांक्षिणः ये वासुदेव ये कृष्ण इतने सुंदर भी है, वे बहुत कुछ है, वे सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति, लेकिन वे सुंदर भी है। देवता भी उस सौंदर्य से आकृष्ट होते हैं। देवः अपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः, दर्शन के आकांक्षी होते हैं देवता। तो भगवान प्रकट होने जा रहे हैं, इसका देवताओं को पता जब लगता है तो सारे देवता पहुंच जाते हैं मथुरा में। उन्होंने की हुई गर्भस्थिति भी भागवत में प्रसिद्ध गर्भस्थिति है। तो उन देवताओं ने तो भगवान को बाद में देखा होगा, लेकिन सर्वप्रथम वासुदेव को देखने वाले वसुदेव ही थे। वसुदेव ऐक्षत, ऐसे सुखदेव गोस्वामी थे वसुदेव, ऐसे वसुदेव को देखा, वसुदेव ऐक्षत देखा। और फिर उन्होंने नमस्कार भी किया और प्रार्थनाएं भी की जो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मथुरा में ऐसे होता है, अगर द्वारका में वैसे ही होता है, वृंदावन में कोई ना उनको कोई प्रार्थना करता है ना तो कोई उनको नमस्कार करता है। तो एक है देवकी नंदन और दूसरे है यशोदा नंदन कृष्ण। ये दो कृष्ण एक होते हुए भी वे दो है, या एक होते हुए भी वे अनेक है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, प्रकट होने मात्र के लिए वे मथुरा में प्रकट हुए, मथुरा में जन्म लिया अपने यह प्रकट लीला में। वैसे कृष्ण को कहीं से आना जाना नहीं होता है वैसे वृंदावन से, समय समय पर भगवान आते तो नहीं, जो वहीं पर होते हैं वो दर्शन देते हैं, पर्दा हटता है और भगवान की नित्य लीला का दर्शन अब प्रकट लीला में होता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पहले सप्तमी को ही भगवान थे, वृंदावन में ही थे। और लाइक पंचमी षष्ठी सप्तमी तो भगवान यही, भगवान का ये नित्य धाम है। फिर समय समय पर यदा यदा ई धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत तदात्मानं सृजामि हम। मैं प्रकट होता हूँ कृष्ण का गोलोक है, भगवान गीता में कहे वैसे परस्तस्मात् भाव अन्य व्यक्तो व्यक्ता सनातन। या तो लीला व्यक्त अव्यक्त प्रकट अप्रकट या नित्य लीला फिर प्रासंगिक लीला, कुछ प्रसंग बनता है, कोई कारण बनता है तो भगवान या दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं। तभी हम कहते तो भगवान अवतार लेते, अवतरती अवतरी ऐसा धातु भी है, नीचे उतरना उसको अवतार कहते हैं। लेकिन कृष्ण को कोई फिजिकली वहाँ से यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान वहाँ भी है यहाँ भी है। एक समय सारे ब्रजवासियों को केसी घाट, नॉट केसी घाट, अक्रूर घाट ले गए। उस अक्रूर घाट को ब्रह्म रेत भी कहते हैं। वहां से कोई सुरंग है, कोई टनल है या टेलीस्कोप है, वहां से भगवान देखो ऊपर देखो। सभी ने ऊपर जब देखा तो कृष्ण बलराम गोलोक में है, वहां भी लीलाएं संपन्न हो रही है और यहाँ तो नित्य लीला या प्रकट लीला में संपन्न हो ही रही थी। लीला वहां हो रही है, लीला यहाँ हो रही है, साइमल्टेनियसली के साथ भगवान ने दिखाया। लेकिन जब समय आता है भगवान के प्राकट्य का, गोपाल चंपो में जीव गोस्वामी लिखते हैं, सारे अवतार वैकुंठ के अलग अलग अवतार, नाना अवतार करो भुवनेशु, किंतु ये सारे अवतार गोलोक की ओर जाते हैं। राम जा रहे, नरसिंह जा रहे, परशुराम जा रहे, सारे अवतार, और वे कृष्ण में प्रवेश करते हैं। और कृष्ण जब अपनी प्रकट लीला का प्रदर्शन करते हैं तो उनके साथ सारे अवतारों के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। एति चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो स्वयं भगवान और अन्य अवतार भी प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करना कृष्ण इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। तो वृंदावन में जो हुआ असुरों का संहार करने के लिए और अवतार, कृष्ण काइंड ऑफ टेक्स बैक सीट और अवतारों को विनाशाय च दुष्कृताम की सेवा देते हैं। और स्वयं कृष्ण तो वृंदावन में अपनी मधुर लीला का प्रदर्शन करते रहते हैं। वृंदावन अपने माधुर्य के लिए प्रसिद्ध है, वृंदावन धाम के। तब तो वैकुंठ में ऐश्वर्य है, वृंदावन में माधुर्य है, माधुर्य धाम है, और मायापुर में मायापुर है औदार्य धाम। वही श्री कृष्ण यहाँ के मधुर लीलाओं का कृष्ण स्वयं आस्वादन करते हैं, वे है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और उन लीलाओं का या मधुर लीला का वितरण करते हैं, कथा को सुनाते हैं और उनके साथ शेयर करते हैं। मायापुर धाम में उदार बन के नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। तो ये माधुर्य धाम, तो मायापुर औदार्य धाम है। ये दो अलग अलग नहीं है वैसे, मायापुर और वृंदावन ये दोनों गोलोक है। वैसे मथुरा भी गोलोक है, गोलोक में है, द्वारिका भी गोलोक में है। गोलोक नामनी निज धामनी तले चतश्य, तो गोलोक धाम के ये डिविजन्स ये विभाग है, एक है वृंदावन मायापुर के, वृंदावन और मायापुर साथ में, दूसरा है द्वारका आई मीन मथुरा, और तीसरा विभाग है द्वारिका। द्वारका में कृष्ण पूर्ण है, मथुरा में कृष्ण पूर्णतर है, और वृंदावन में कृष्ण पूर्णतम है। तो इस पूर्णतम वृंदावन धाम में भगवान अपनी मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। मधुर लीला गौरांगेर मधुर लीला, या भी कहते कृष्णेर मधुर लीला, जर करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलोता। और जो भी इस मधुर लीलाओं का आस्वादन करेंगे, श्रवण करेंगे, और ये लीला जब पहुंचेगी हृदय प्रांगण में जहाँ जीव का निवास है, जीव रहता है वहाँ हृदय में, तो भगवान का लीला के रूप में, लीला भी भगवान का स्वरूप है, नाम भी भगवान का स्वरूप है, गुण भी भगवान का स्वरूप है, तो वह मिलन होता है, जीव और भगवान का मिलन। भगवान लीला के, लीला स्वरूप भगवान और जीवात्मा। तो जीव जब श्रवण करता है तो हृदय निर्मल भेलोता, वो जीव का हृदय निर्मल होता है, जीव की चेतना निर्मल होती है, या उस जीव का भगवान कहते मत चित्ता, फिर उसका चित्त जो चेतना है मत चित्त मुझमें चिपक जाता है, मुझमें लगा रहता है, मुझसे हटाया नहीं जा सकता। तो कृष्ण के लीला से लगा मैग्नेट, चुंबक की तरह, तो जीव ऐसा खींचा जाता है उस लीला की ओर। और फिर योगा योग, योग होता लिंक, संबंध स्थापित हो गया। तो कृष्ण की यह वृंदावन की मधुर लीला, मथुरा में वात्सल्य का अनुभव करते हैं वसुदेव देव की। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाल वाला। लेकिन मथुरा में वसुदेव देवकी का जो वात्सल्य है कृष्ण के प्रति, ऐसे मथुरा में कृष्ण नहीं है, मथुरा के कृष्ण वासुदेव कहलाते हैं। ये थोड़े कम कृष्ण है, स्टेप डाउन, उनकी जो भगवत्ता है उसकी मात्रा मथुरा में कम, द्वारका में और भी कम, और वैकुंठ में और भी कम। तो लीला पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम तो वृंदावन में, तो वहां का वात्सल्य, मथुरा का वात्सल्य और वृंदावन का वात्सल्य। मथुरा के वात्सल्य में ऐश्वर्य मिश्रित है, ऐश्वर्य का मिश्रण होता है वात्सल्य में। वृंदावन में ऐश्वर्य का अभाव है, वृंदावन में माधुर्य की प्राधान्यता है, मथुरा में द्वारका में ऐश्वर्य की प्राधान्यता है। एक ऐश्वर्य, दूसरा माधुर्य। मथुरा का वात्सल्य और वृंदावन का वात्सल्य। तो मधुर है यहाँ का वात्सल्य, वृंदावन का वात्सल्य मधुर है, उसके माधुर्य है। जशमति नंदन ब्रजवर नागर, जशमति नंदन ब्रजवर गोकुल रंजन काना, रंजन काना। गोकुल में या वृंदावन में यहाँ के भक्त इतने प्रसन्न है, भगवान उनको इतना प्रसन्न करते हैं, मनोरंजन आत्मरंजन, वृंदावन के जीवों का भक्तों का आत्मरंजन मनोरंजन करने वाले कौन है, स्वयं श्री कृष्ण है, इतना आनंद देते हैं। और स्वयं भगवान या कृष्ण और उनके जो भक्त वृंदावन के भक्त हैं उसमें घनिष्ठ संबंध, बड़े बड़े निकट के भक्त, कोई दूरी नहीं है उसमें, अपनापन है, अपने हैं। मथुरा के भी अपने हैं लेकिन उसमें थोड़ा ऐश्वर्य मिश्रित है, द्वारका में भी अपने हैं लेकिन थोड़ा दूर है। इसको शास्त्रों में या भक्ति रसामृत सिंधु में विश्रम्भ, विश्रम्भ सख्य कहा, विश्रम्भ सख्य, विश्रम्भ वात्सल्य और विश्रम्भ माधुर्य। तो विश्रम्भ ये जीव का भक्तों का भगवान के साथ जो संबंध है, रिलेशनशिप है, लेन देन है, आदान प्रदान है, ये विश्रम्भ, विश्रम्भ स्तर पर होता है। जिस स्तर पर तुम ही अमी सम तुम कौन बड़ा लोग वृंदावन के मित्र है, तुम कौन बड़े हो, तुम ही अमी सम तो जैसे भगवान ऐसे घुल मिल जाते हैं सभी ब्रजवासियों के साथ, और कोई अपना आई एम गॉड आई एम ईश्वर ऐसा अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं अपने ऐश्वर्य का, मैं महान हूँ और झुक जाओ सरेंडर प्रणाम करो, ऐसा ना डिमांड होता है ना ऐसा भाव होता है ना ऐसा भगवान ऐसा सोचते नहीं वृंदावन के भक्तों के साथ। अर्जुन भी तो सखा है, भक्तोसी में सखा चाहिए थी, भगवान ने कहा गीता में अर्जुन को तुम मेरे सखा हो, लेकिन वो जो सख्य भाव है अर्जुन और कृष्ण के मध्य का, उसमें ऐश्वर्य मिश्रित है, ऐश्वर्य मिश्रित सख्य भाव है, लेकिन वृंदावन का के सखा जो होते हैं विश्रम्भ सख्य, तो खेल के बीच में से कृष्ण अगर जाना चाहते खेल पूरा नहीं हुआ पुनः नहीं खेलेंगे, तो कृष्ण को सोचना पड़ता है और कृष्ण रुक जाते हैं, खेल पुनः शुरू हो जाता है, कृष्ण को सचमुच लगता है कि पुनः मैं खेल नहीं पाऊंगा मेरे मित्रों के साथ, मुझे नहीं जाना चाहिए, तो कृष्ण रुक जाता है। कभी कुश्ती खेलते हैं तो कृष्ण का पराजय होता है, जो अजीत है तो अजीत लेकिन पराजित हो जाते हैं कृष्ण वृंदावन में, उनको बहुत अच्छा लगता है, इस बिकम वेरी हैप्पी जब उनका मित्र उनको पराजित करता है। तो विश्रम्भ सख्य विश्रम्भ वात्सल्य अविश्रम्भ माधुर्य भी और द्वारिका में भी माधुर्य है, लेकिन उसमें ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य है। वैकुंठ में भी माधुर्य है कि हर अवतार ये अपनी लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी नरसिंह भी है वराह लक्ष्मी भी है, हर भगवान की हर अवतार की अपनी अपनी लक्ष्मी है, उनके मध्य में वो माधुर्य और श्रृंगार रस, लेकिन उस श्रृंगार रस में ऐश्वर्य है, वृंदावन के श्रृंगार रस में माधुर्य है या विश्रम्भ माधुर्य है। परकीय भावे जहां ब्रजेते प्रचार, तो वृंदावन का जो माधुर्य है, वृंदावन की गोपियों का जो कृष्ण के प्रति भाव है भक्ति है वो सर्वोच्च भी है, प्रेम प्रेम से भरी। प्रेम उपमार तो महान, वृंदावन अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध है, अपने माधुर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ ये धाम कृष्णा भी पूर्णतम कृष्ण गोलोक में होता, मतलब वृंदावन में होते हैं, मथुरा में नहीं होते, द्वारका में नहीं होते, वैकुंठ में नहीं होते, वृंदावन में होते हैं। तो ऐसे ऐसे लीला का प्रदर्शन करने श्री कृष्ण इस धाम में अपने प्रकट लीला दिखाते हैं। वैसे गीता में तो कहे संभवामी क्या युगे युगे, लेकिन हर युग में नाना अवतार प्रकट होते हैं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण कौन है? कृष्ण अवतार ही है। तो कृष्ण तो कल्पे कल्पे, एक कल्प में एक बार भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। कल्प ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार एक समय भगवान वृंदावन में प्रकट होंगे। या कृष्ण, कृष्ण तो कृष्ण कहाँ प्रकट होंगे? कृष्ण कहाँ प्रकट होते हैं? वृंदावन में, वृंदावन में रहते हैं। तो कृष्णा जिनका नाम है और गोकुल जिनका धाम है, और ये धाम कुछ 5000 वर्ष पूर्व नहीं बना, उसके पहले नहीं था। ये धाम सदा के लिए यहाँ है, सदा के लिए ये धाम यहाँ है। ये धाम भी शाश्वत है। क्योंकि ये सृष्टि, ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। ये सृष्टि और स्थिति और प्रलय जिस प्रकृति का, जिस सृष्टि का होता है, ये सृष्टि वैसी नहीं है। ये सृष्टि तो सनातन, ये शाश्वत सृष्टि है। जब एक समय पृथ्वी गिर गई, पृथ्वी का पतन हुआ, रसातल में पहुंच गई, फिर भगवान ने अवतार लिया। ऐसा अवतार लिया, कौन सा अवतार? वरा अवतार। न जाने कहा कीचड़ में गिर गई पृथ्वी, कहीं गटर में गिर गई, कहा गंदे नाले में गिर गई, तो वहां कौन जा सकता है? सुअर जाते, सुकर जाते हैं। तो भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, वरा बने। तो इस कल्प के पहले अवतार है, इस कल्प के पहले अवतार वराह, और इस कल्प के पहले राक्षस असुर है हिरण्याक्ष। तो भगवान ने हिरण्याक्ष का पृथ्वी को खोजा और हिरण्याक्ष का वध किया। भगवान ने पृथ्वी को उठाया अपने दांत पर, ये कोई जंगली सूकर जैसा, या वृंदावन के सूकर तो ऐसे दांत अंदर होंगे, बाहर नहीं दिखते, लेकिन तो जंगली के दांत बाहर दिखते हैं। तो भगवान ने अपने दांत के ऊपर पृथ्वी को रखा और आ गए। आके भगवान जमुना के तट पर बैठ गए, विश्राम घाट में बैठ गए। भगवान कहाँ बैठे हैं? विश्राम बहुत नीचे, वहां से जब ढो रहे थे तो भगवान का तो कष्ट नहीं लगे, प्रवास है तो थोड़ा रास्ते में रुके या विश्राम किया विश्राम घाट पर। तो वराह भगवान बैठे थे मथुरा में, तो पृथ्वी कहाँ थी? कहाँ है? बैठे कहाँ है? मथुरा में। और पृथ्वी कहाँ है? दांत के ऊपर। दिल्ली कहाँ है? दांत के ऊपर। जयपुर कहाँ है? आगरा कहाँ है? दांत के ऊपर। अमेरिका, ऑल दैट, ऑल दिस कॉन्टिनेंट्स, सारे सागर और सारे खंड उनके दांत के ऊपर है। तो पृथ्वी का पतन हुआ, वृंदावन मथुरा का पतन नहीं होता। मथुरा वृंदावन भी अच्युत है, इनफेलिबल। और सनातन है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम वृंदावनम। और भगवान का वो धाम सनातन धाम, वो वाला भी और ये वाला भी सनातन धाम है। तो जब प्रलय होगा, संसार नहीं रहेगा, वृंदावन रहेगा। इसलिए ऐसे स्थान पर पहुंचना चाहिए जो सदा के लिए रहेगा। अब और कहीं भी घर बनाओ, बंगलो बनाओ, ये हो कर एक समय क्या होगा? उसका नाश होगा। हो सकता है घर के नाश होने के पहले हमारा भी नाश हो सकता है। तो हमें ऐसे स्थान का भी आश्रय लेना चाहिए जो जो शाश्वत है, सदा के लिए रहेगा। तो भगवान जब प्रकट होते हैं, एक तो अपने धाम से उनके परिकर ही आ जाते हैं। क्या यही के भी यही से यही के परिकर होते हैं, पार्षद होते हैं। नित्य 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 मुक्त आत्मा, कावर्ड बॉयज, कावर्ड गर्ल्स, गाय भी है ये सब। उस प्रकट लीला में देवता देवता भी सम्मिलित हो जाते हैं। और तीसरी पार्टी है जो साधना करके जो साधन सिद्ध हुए हैं, जिनका भगवान के पास पहुंचने का समय हो चुका है, या भगवान के धाम लौटने के जो अधिकारी बन चुके हैं, उनको भी उस प्रकट लीला में भगवान प्रवेश कराते हैं। हम हमारी जो मंडली है, न तो हम भगवान के नित्य परिकर है, या परिकर होते तो फिर हम लोग और जन्म लेके नाना योनियों में भ्रमण नहीं करते जैसे हम कर चुके हैं। किए कि नहीं? ऐसा हो चुका है। बहुनी में वेदितानि जन्मानि तानि अहम वेद सर्वानि नत्वेत्त परंतप। इसे अर्जुन को भगवान कहे, तुम्हारे और मेरे कई सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, लेकिन हुआ कि अंतर क्या है? तानि अहम वेद सर्वानि, उन सारे जन्मों को तुम्हारे और मेरे, अहम वेद मैं जानता हूं, लेकिन नत्व वेत्त परंत तुम नहीं जान, तुम भूल गए। तो हम ये संसार के भूले भटके जीव, अब कोई साधना कर रहे हैं, वृंदावन पहुंचे हैं, तो भगवान के अब प्रकट लीला तो नहीं है, नित्य लीला तो है यहां। तो जो जो भक्त वृंदावन पहुंचे हैं, मानो वो तीसरी पार्टी है, एक एक परिकर पार्टी, दूसरी देवता और तीसरे साधना से जो सिद्ध होते हैं, साधन सिद्ध, जिनका समय आ चुका है नित्य लीला प्रविष्ठ, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद दूसरे कैटेगरी में है, लेकिन और नित्य लीला में प्रवेश करते हैं जो जो भक्त मुक्त होके जो भक्त बने हैं। और फिर भगवान ने उसे कहा, कह सकते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, नो मोर बर्थ, पुनः जन्म नहीं। तो ये ऐसी स्थिति को कौन प्राप्त कर सकता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह वेत्ति तत्वतः, जो जो भक्त जो साधक मेरे जन्म को, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के इसका लाभ उठा सकते हैं हम लोग, श्री कृष्ण के जन्म का, श्री कृष्ण ने जन्म लिया आपके लिए, भगवान ने जन्म लिया किसके लिए, तेरे लिए तुम्हारे लिए मेरे लिए भगवान ने जन्म लिया। तो उस तो भगवान के जन्म के लीला या जन्म का जो सारा तत्व है, सिद्धांत है, तो कृष्ण को तत्वतः समझना। कृष्ण कह रहे हैं जो मेरे जन्म को तत्वतः समझता है, मेरे लीलाओं को तत्वतः समझता है, और धार्मिक बनता है, या कलयुग है, जानता है कि कलयुग आ गया, तो फिर क्या करता है, कलयुग के धर्म का अवलंबन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये सब करता है। तो फिर क्या उसके लिए भगवान क्या करेंगे, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, पुनर्जन्म नहीं। मानो भगवान जन्म लेके हमारे मृत्यु के मरण बन जाते हैं, हमारे मृत्यु को मारते हैं भगवान, हैंड्स ऑफ, हे यम यमदूतो नॉट हियर, यहां नहीं यहां नहीं यहां नहीं, नॉट हियर, तुमने सुना नहीं क्या, उसने तो नारायण नारायण कहा, नारायण कहा, नारायण नारायण नारायण, इसमें गले में कंठी माला देख नहीं रहे, देखते हो क्या, नहीं तिलक भी है, ये है वो है, तो तुम्हारा अधिकार नहीं है यहाँ, गेट आउट, जैसे विष्णुदूत और यमदूतों के बीच का जो संवाद, और तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी, तो हम सभी के लोकानां प्राण कारणात् गोलोकम् च परित्यज्य, शास्त्र में कहा है भगवान क्यों प्रकट होते हैं? लोकानां त्राण कारणात्, यहाँ के लोग, और वैसे यहाँ के लोग तो भगवान के लोग है, अपने लोग, उनके लोग है, उनके पुत्र है, उनके है, कृष्ण के है। कौन सजम भयम, भागवत में कहा भगवान अभी विश्वात्मा, कौन सजम भयम, कंस के भय से भयभीत है, इसलिए भगवान ने सारी व्यवस्था शुरू की। फिर कहा था योग में जाओ जाओ ब्रजम गच्छ, वहां क्या करना है? बलराम पहले ही प्रकट हो चुके हैं, अब देवकी गर्भ में है, वहां से स्थानांतरित करो, गर्भांतर गर्भांतर। अभी तक ये टेक्नोलॉजी, ये मेडिकल साइंस में गर्भांतर, ये ट्रांसप्लांट, वो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, दूसरा बिठा लेते हैं, लेकिन गर्भांतर या एक गर्भ से दूसरे गर्भ में पहुंचाने का ये जो साइंस, ये जो कला है, ये आध्यात्मिक जगत से सीमित है। ये गर्भांतर ऐसा करो, बलराम को पहुंचा दो वहां। या मैं सोच रहा जब कृष्ण जन्मे मथुरा में, और वो सुदेव से कहा मुझे ले चलो, कहा मुझे गोकुल ले चलो, मैं हथकड़ी बेड़ी नहीं देख रहा क्या, मैं तो हिल और डुल भी नहीं सकता, और मुझे कह रहे तुम ले चलो। तो भगवान या वसुदेव जब मन बना ही लिया ले जाने का, तो क्या हुआ? हथकड़ी बेड़ी टूट गई। हम भी जब कृष्ण को धारण करेंगे, उन्होंने उठाया, वसुदेव उठाएंगे, तो हम भी भगवान को उठाएंगे, भगवान को धारण करेंगे, उसी के साथ हमारी सारी हथकड़ी बेड़ी हरी हरी। और फिर जब उठा के ले जा रहे थे, तो वह रास्ते में कई गेट आफ्टर कारागार था, तो और बहुत कुछ पहरेदार सो गए और ये सब हो ही रहा था, लेकिन गेट भी खुल रहे थे। कैसे खुल रहे थे? ऑटोमेटिक, उन्होंने कह ही दिया ऑटोमेटिक। वैसे ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है संसार में, जब हमको पता नहीं होता कि ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, तो फिर हम कह लेते हैं इस ऑटोमेटिक, लेकिन नथिंग इज ऑटोमेटिक। तो हुआ तो ऑटोमेटिक, तो जो ऑटोमेटिक जो आइडिया है ऑटोमेटिक, ये भी अभी जो ऑटोमेटिक का भी ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो पहले तो ऑटोमेटिक भगवान ने ऑटोमेटिक दरवाजा खोल के दिखाया। पहली बार एयरपोर्ट गया, अपना ट्रॉली पर मेरा सामान था और लेके जा रहा था, तो फिर लिखा था यार एंट्रेंस हियर, यहां से प्रवेश करना है, लिखा तो था एंट्रेंस, लेकिन उस दरवाजा तो बंद था। तो मैंने सोचा कि अभी ट्रॉली को मैं तब बगल में रखे दरवाजा मुझे खोलना होगा, तब अंदर जा सकता हूँ। लेकिन थोड़ा आगे गया ट्रॉली को बगल में रखे, तो ऑटोमेटिकली खुल गया। मैंने सोचा ये भूत भूत, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, इट ओपन। लेकिन दैट ऑटोमेटिक सिस्टम जो है, दिस इज 5000 ईयर ओल्ड, अभी के लोग उसकी नकल कर रहे हैं, तो लाइक दैट. तो हुआ तबे कृष्ण कन्हैया लाल मानव वृंदावन में जो, वृंदावन में जो वात्सल्य, वृंदावन का वात्सल्य से कृष्ण बड़े उत्कंठित थे. यशोदा का वात्सल्य का आस्वादन तो मथुरा में ऑफिशियली प्रकट तो हो गए, प्रकट लीला वहां दिखाए, लेकिन स्वयं को ट्रांसफर कराए. कृष्ण वृंदावन पसंद करते हैं, कृष्ण वृंदावन पसंद करते हैं. वृंदावन में रहना पसंद करते हैं. मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ श्री कृष्ण इज वृंदावन. उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही. जब वे मथुरा में थे तो उद्धव जी से कह रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंशियली उसके एकांत में कह रहे थे, उद्धव क्या कहूं, वो ब्रज को भूल नहीं सकता, ब्रज को भूल नहीं सकता. और एक एक याद करके कह रहे थे, इसको भूल नहीं सकता, उसको भूल नहीं सकता. ये मथुरा कंचन की नगरी, ऐसा उन्होंने कहा. यहां तो व्यापार सोना चांदी का, इसका उसका व्यापार खूब चलता रहता है. लेकिन प्रेम का व्यापार तो वृंदावन में होता है. तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम की भूख. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया, भक्ति से. तो वह मथुरा में जब कृष्ण है तो देवकी के दे, ले लो नाश्ता खाओ. लेकिन जब वृंदावन में यशोदा खिलाना चाहती है तो उसे गोद में बिठाती है, लिटाती है. कृष्णा तो बड़े हुए लेकिन स्पून फीडिंग करना चाहती है, चम्मच से उसको खिलाना चाहती है प्रेम से. शायद कृष्ण स्वयं ही खाना जाने ना, ना मैं खिलाते. तो मथुरा में जो कृष्ण को प्रेम मिलता है, और फिर वृंदावन में जमीन आसमान का अंतर है. ऐसे प्रेम के भूखे कृष्णा. तो वृंदावन में कुछ प्यास बुझती है. वही जो वसुदेव देवकी को, यही तो जब कंस के वध के उपरांत जब हथकड़ी बेड़ी से मुक्त कर दिया, और कृष्ण और बलराम से अपने पुत्रों से, बलराम को तो देवकी कभी देखी ही नहीं थी, अपना ही पुत्र लेकिन गर्भ में था, जन्म लेने के पहले ही स्थानांतरित किया गया और गोकुल में जन्म लिया रोहिणी के पुत्र के रूप में. रोहिणी को कभी देखी ही नहीं थी, कृष्ण को देखी थी कुछ कुछ मिनटों के लिए. तो 10-11 वर्षों के उपरांत कृष्ण बलराम को जब वसुदेव और देवकी मिले, हथकड़ी बेड़ी को छुड़वाया, तो वसुदेव और देवकी प्रणाम करते हैं. तो ये भाव का अंतर है. वृंदावन में यशोदा छड़ी लेके आती है, तमाचा लगाती है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। तो कृष्ण को पुत्र होने का अनुभव, शी वॉन्ट्स टू बी चाइल्ड। मित्र होने का और प्रियकर होने का अवसर वृंदावन में ही कृष्ण को प्राप्त होता है। ऐसे ही है, मधुर लीला की भूमि है और इस यहाँ की लीला इतनी मधुर है, इसका यहाँ का इतना माधुर्य है, उस माधुर्य से कृष्ण भी मोहित हुए, आकृष्ट हुए। जब उनको नेक्स्ट टाइम जन्म लेना था, प्रकट होना था चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उनको उद्देश्य ही रहा कि मैं राधाया महिमा की दृश्य, यदि गौर न होते तबे की होते क्या राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानाते के। तो राधा की का महिमा और उनके राधा के प्रेम रस की जो सीमा, मतलब असीम है राधा का प्रेम, इसको संसार कैसे समझता यदि गौर न होते। गौरांग महाप्रभु अगर नहीं होते, गौरांग महाप्रभु ने प्रकट होके उसका आस्वादन नहीं किया होता और शेयर भी नहीं करते कितना मीठा, कितनी मीठास है, इतना माधुर्य है वृंदावन का या वृंदावन की लीलाओं का, तो संसार को कैसे पता चलता। तो वैसे कृष्ण को ही पता नहीं था, कृष्ण स्वयं पता लगवाने के लिए। और रुक्मिणी ने कहा ही था, प्रभु प्रभु द्वारका में कही थी, ऐसी कुछ बातें हैं प्रभु जी आप नहीं जानते हो, द्वारकाधीश से कह रही रुक्मिणी। बस एक तो मैं जानती हूं और वैसे मुझसे अधिक तो राधा रानी जानती है। तो कृष्ण ने रुक्मिणी की बात जब सुनी तो कृष्ण कहे व्हाट, क्या मैं नहीं जानता, तुमने भागवत नहीं पढ़ा क्या? पहले श्लोक में कहा है अभिज्ञ स्वराट, मैं तो सर्वज्ञ हूं ऐसा भागवत में कहा है और तुम कहते कि तुम मैं कुछ बातें नहीं जानता हूं। हाँ हाँ आप नहीं जानते, आप नहीं जानते हो, राधा रानी जानती है। तो फिर भगवान ने संकल्प किया, चैतन्य मंगल में ऐसा लिखा है, चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ में। तो भगवान ने संकल्प किया, नेक्स्ट टाइम मैं जब प्रकट होऊंगा राधा बनूंगा, राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा का भाव और राधा की कांति को अपनाऊंगा और प्रकट होके तुम कहती है मैं राधा रानी को नहीं जानता हूं, मैं ही राधा बनता हूं। तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। और इसमें उन्होंने वृंदावन का जो माधुर्य है, और ऐसे सभी माधुर्यों में जो माधुर्य रस है, ये सख्य रस भी मधुर है, वात्सल रस उससे भी अधिक मधुर है और सर्वोपरि है श्रृंगार रस या माधुर्य रस, उसके ऊपर कुछ नहीं है। हरी हरी। तो हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए कृष्णा एज ही इज, कृष्णा एज इट इज, कृष्णा जैसे हैं, अब वृंदावन के कृष्ण का पता या परिचय अगर किसी को है तो गौड़ीय वैष्णवों को है। गौड़ीय वैष्णव जानते हैं, मेरे वे कृष्ण को भी जानते हैं, राधा रानी को भी जानते हैं, यशोदा को भी जानते हैं, और कावड़ बॉयज और ये सारे रसों को। जो विश्रम्भ रस, विश्रम्भता के कारण ये जो रस है, ये धाम मधुर धाम माधुर्य धाम, और यहाँ के कृष्ण मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, लंबी सूची है का, ये मधुर है, ये मधुर है, ये मधुर है, ये मधुर है, जमुना मधुर है, वीची मधुर है, ये मधुर है, वो मधुराधिपति पतेर अखिलम मधुरम, हर बात मधुर है, हर बात मधुर है, उनका नाम भी मधुर है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम और स्पेशली कृष्णा अपने चार माधुरियों के लिए भी प्रसिद्ध है वृंदावन में। भगवान का वेणु माधुर्य, तो भगवान की जो 64 क्वालिटीज, भगवान के 64 गुण होते हैं, उसमें से ऐसे चार गुण हैं जो और किसी अवतारों में भी नहीं होते हैं, नारायण में नहीं होते और राम में नहीं होते, वराह नरसिंह किन्हीं में नहीं होते, केवल कृष्ण में होते। 4 क्वालिटीज, चार गुण हैं, तो वह का वेणु माधुर्य भक्त सुना रहे, दिखा रहे कृष्ण का जो वेणु माधुर्य, वेणु गीत, वेणु का भगवान की वेणु कहते, वेणु रेणु धेनु, भगवान की रेणु चरण की रेणु, और कृष्ण की धेनु और कृष्ण की वेणु, ये चार में नहीं है दूसरे वाले, वेणु ही है। तो भगवान की वेणु, वेणु माधुर्य, भगवान का रूप माधुर्य, कृष्ण सर्वांग सुंदर है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्यम, तो समग्र सौंदर्य कृष्ण में पाया जाएगा। और अवतार भी सुंदर है लेकिन थोड़े कम सुंदर है, कृष्ण परम सुंदर है, सर्वांग सुंदर, समग्र सौंदर्य कृष्ण में है। तो वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, कृष्ण की लीला सारी वृंदावन की लीला है, मधुर लीला वृंदावन की लीला, मधुर लीला सर्वोपरि। और क्या बच गया? प्रेम माधुर्य, प्रेम कृष्ण का, प्रेम कृष्ण प्रेम, कृष्ण जैसा और जितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, ऐसा इतना प्रेम और अवतारों में प्राप्त नहीं होता भक्तों को, जितना ब्रज भक्तों को प्रेम देते हैं भगवान। तो वह हरी हरी ऐसे फिर कह सकते ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को क्या मेरे बारंबार प्रणाम है। और समझ के प्रणाम कर सकते हैं तो हम क्यों प्रणाम करेंगे, ऐसे है, ऐसे है, इतने सुंदर है, इनकी मुरली की नाद इतनी मधुर है, इसलिए प्रणाम ऐसे श्री भगवान को, इनकी लीला इतनी मधुर है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। तो हर बात फिर प्रणाम करना होगा ऐसे ही, तो हर बात चमत्कृत चमत्कार चमत्कारी है, तो जहां चमत्कार है वहां नमस्कार होना चाहिए कि नहीं, या चमत्कार वा नमस्कार। तो वंडरफुल कृष्ण है, भगवान की हर बात वंडरफुल है, अद्भुत है, बाप रे वाह वाह भगवान है। रास रसैया ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम, और गोवर्धन धरैया दीन बंधु प्रभु क्या क्या कह रहे थे गा रहे थे, ऐसे ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है। तो ऐसे भगवान का जन्म दिवस एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ कुछ दूर नहीं है, कितनी दूरी है अभी, 2 more days टू गो, केवल 2 दिन बाकी है। तो आप सब एक्सपेक्ट कर रहे हो भगवान आएंगे, तो कुछ तैयारी हो रही है मानसिक और दिस और दैट वे भगवान के प्राकट्य का, या बर्थडे पार्टी, भगवान के बर्थडे पार्टी, ऐसे सारे संसार तैयार हो रहा है बर्थडे पार्टी के लिए। 1965 की बात है, प्रभुपाद जब जलदूत बोर्ड से जा रहे थे, देवदूत जा रहे थे जलदूत से, प्रभुपाद देवदूत कृष्ण दूत जा रहे थे जलदूत बोर्ड में बैठ के, तो रास्ते में आ गया जन्माष्टमी का तिथि आ गई, तो प्रभुपाद जो कर्मचारी थे जलदूत बोर्ड के उन सबको इकट्ठे किए और बोर्ड पर ही उत्सव मनाए। तो इस्कॉन की, वैसे ऑफिशियल इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन वो इस्कॉन के कह सकते हैं फर्स्ट जन्माष्टमी 65 बोर्ड में मनाई गई, ओनली वन, एक ही हुई। लेकिन अब पता है 150 देशों में जन्माष्टमी मनाई जाएगी, 100s and 1000s छोटी मोटे उत्सव ये सारे पृथ्वी के कोने कोने में मनाया जाएगा जन्मोत्सव। श्रील प्रभुपाद की, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद के चरणों में भी हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनको निमित्त बना के भगवान ने ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करवाई, निमित्त बना के सेनापति भक्तों को भेजे विदेश यदि प्रभुपाद न होते तो की होते? कृष्ण बलराम मंदिर होता क्या? राज की कथा होती? हम कहीं ना कहीं होते लेकिन यहां नहीं होते। ये सब गुरु और गौरांग श्रील प्रभुपाद और श्री कृष्ण, ये सारी व्यवस्था है। तो वह हम सदैव ऋणी रहेंगे श्रील प्रभुपाद के। उन्होंने हमारे लिए, संसार के लिए जो वैकुंठ का गोलों का द्वार खोल दिया, और सारे संसार को मंत्र दिया, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, और बुक्स दिए, ग्रंथ दिए, श्रीमद् भागवत दिया, चैतन्य चरितामृत दिया, क्या नहीं दिया, सब सब दिया। भगवत प्राप्ति के लिए सारे साधन जुटा है। फिर प्रभुपाद का जन्म दिवस भी है, डे आफ्टर जन्माष्टमी के दूसरे दिन ही अष्टमी का जन्म श्री कृष्ण का, और नवमी का जो वो जिसका हुआ नंदोत्सव भी कहते हैं, नंदोत्सव के दिन प्रभुपाद का भी जन्म हुआ, या भगवान ने जन्म दिया अपने प्रिय भक्त को, जन्म दूसरे ही दिन दे दिए, ऐसे पता चलता है। कृष्ण और प्रभुपाद के मध्य का जो घनिष्ठ संबंध, दूर कई कुछ महीनों के उपरांत नहीं, नेक्स्ट डे, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये क्या है, अरेंजमेंट। प्रभुपाद का जन्म नेक्स्ट डे होना, ये कोई व्यवस्था है, कृष्ण की व्यवस्था है। कृष्ण ने जन्म दिया प्रभुपाद को, जन्म जन्मोत्सव नंदोत्सव के दिन, ये दोनों उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, और श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महोत्सव की, ये बड़े महत्वपूर्ण उत्सव है हम सभी के लिए। तो हमें जोरदार तैयारियां करनी है ताकि ये दोनों उत्सव धूमधाम के साथ, गौर प्रेमानंदे हरी हरी प्रभुपाद की, श्री कृष्ण बलराम की।